आशा की किरण, यह है पॉडकास्ट आपका अपना, जहां पर आप और हम मिलकर जीवन को देंगे एक नए सूर्योदय की आशा की किरण। जी हां साथियों, इस कार्यक्रम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी को ले जाएं उम्मीद, आशा, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और ढेर सारे उत्साह की ओर। तो फिर हर रोज़ आशा की किरण में आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम नए नए प्रयास, नई नई कोशिशें जीवन को एक उत्थान देने की करते रहेंगे। ज़रूरत है आपके साथ की, तो मिलते रहिए आशा की किरण में, जो लेकर आऊँगी मैं आपकी दोस्त किरण आचार्य। जय श्री कृष्णा साथियों, हमने पिछले भाग में आपको बताया था कि गीता पढ़ने के दुर्लभ लाभ कौन से हैं, और जब हम गीता को बार बार पढ़ते हैं और जितनी बार पढ़ते हैं उस स्तर पर हमको क्या क्या लाभ होते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हम किस मनोअवस्था से गुजरते हैं, यही हमने आपको बताया था। पिछली बार हमने आपको चार इसके स्तर बताए थे, चार चरण में हमें क्या महसूस होता है, हम किस प्रकार से उसको सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो आपको याद है क्या हमने क्या बताए थे पिछले चार चरण? चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। पहली बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो केवल हम उसके पात्रों का परिचय करते हैं। दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो वे पात्र क्या कार्य करते हैं और क्यों कर रहे हैं, हम प्रश्न उठाने लगते हैं। तीसरी बार जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसके अर्थ को समझने लगते हैं और सब अपने तरीके से इसको समझते हैं। चौथी बार जब गीता पढ़ी जाती है तो उसके पात्रों के मन के भाव को पढ़ने लगते हैं। और अब आपको बताते हैं पांचवा चरण। पांचवी बार गीता पढ़कर हमें लगता है कि पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा है, युद्ध के लिए तैयार सभी को देखकर हम अलग अलग कल्पनाएं करते हैं। छठी बार हम पढ़ते या श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, कोई हमें बता रहा है। सातवीं बार पढ़ने पर हम स्वयं अर्जुन बन जाते हैं और यही लगता है कि सामने भगवान विराजमान हैं और वे ही हमें सब कुछ बता रहे हैं। आठवीं बार पढ़ने पर यह अनुभव होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो हमारे अंदर ही हैं। तो इन आठ स्तरों से गुजरकर हमें गीता का महत्व पता चलता है कि संसार में गीता से अलग कुछ भी नहीं। भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है, गीता सहजता से मनुष्य की जिज्ञासा शांत कर उसके कष्ट का निवारण करती है। यानी कि गीता अमृत है। तो इसीलिए कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को बार बार पढ़ना चाहिए, कम से कम आठ बार तो पढ़ना ही चाहिए। तो अब हमने इसको ध्वनि रूप में ये पॉडकास्ट में लिया है, आप चाहें जब इसको पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं आराम से, जब चाहें आठ बार इसका श्रवण कीजिए और गीता के रहस्य की परतों को खोलिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा ग्रंथ है और उसमें हमारे सारे प्रश्नों के जवाब हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लगातार इसके सभी जो हमारे भाग हैं उन्हें सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी भेज रहे हैं। तो आपके ध्वनि संदेश मुझे मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज हम शामिल कर रहे हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से मनीषा दायमा का ये संदेश। आप एक गृह प्रबंधक हैं और हमारे जो कार्यक्रम है उनको लगातार सुनती है निरंतरता से, तो सुनते हैं अहमदनगर महाराष्ट्र से मनीषा दायमा का भेजा हुआ यह संदेश।
आशा की किरण पॉडकास्ट में किरण जी आचार्य द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, उनके अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पठन अत्यंत स्पष्ट, सुरीली और सटीक वाणी में मन को बहुत भाता है। लॉकडाउन की इन नकारात्मक परिस्थितियों में आशा की किरण ने हमें ये प्रेरणा दी है कि जिंदगी सच में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा दाय माँ जी, आपने महाराष्ट्र अहमदनगर से हमें ये मैसेज भेजा और बिल्कुल सही कहा आपने। हम अगर अपना दृष्टिकोण बदल दें, सुंदर रखें और धीरज रखें, तो जीवन में आने वाले सुख दुख जो हैं वो हमें विचलित नहीं कर सकेंगे। वास्तव में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, उसे महसूस करने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। और साथियों, एक और सुंदर सा मैसेज हमें भेजा है डॉक्टर सुलोचना शर्मा ने बूंदी से। आप मैजिस्ट्रेट मेंबर हैं CWC की और आपने हमें ये मैसेज भेजा, आइए हम आपको सुनवाते हैं।
जय श्री कृष्णा। कोरोना का भय और लॉकडाउन के इस नैराश्य के वातावरण में किरण जी आपके द्वारा आरंभ श्रीमद् भागवत गीता की टीका का श्रवण करना वाकई एक आशा की किरण से कम नहीं है। रोजमर्रा की आपाधापी भरी जिंदगी में श्रीमद् भागवत गीता का पठन और श्रवण पूर्व में कई बार किया, किंतु मनन नहीं हो सका। अगर इस दौर का सकारात्मक पहलू देखती हूँ तो इन दिनों हम घरों में हैं और एक तरह की शांति और सुकून भी है। ऐसे में किरण जी आपके द्वारा भगवद गीता के हर शब्द, हर श्लोक की जो सार गर्भित विवेचना की जा रही है, उससे इस महान ग्रंथ की नए अर्थों में समझ विकसित हुई है। आपके इस सार्थक प्रयास के लिए साधुवाद। तो इंतज़ार रहेगा अगले अध्याय का। जय श्री कृष्णा।
बिल्कुल सही कहा सुलोचना जी आपने। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसको अगर अपने अनुसार ढाल लें कि कुछ पढ़ें, कुछ सुने सकारात्मक, तो उससे देखिए घटनाएं तो जो घटनी होती हैं वो घटती हैं, लेकिन उसको देखने की हमारा परसेप्शन, हमारी दृष्टि बदल जाती है और हम धैर्य से उसको सहन करने की जो क्षमता है वो हम में आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर मैसेज के लिए। तो आज हम दोनों हमारे लिसनर्स अहमदनगर महाराष्ट्र से मनीषा दायमा जी और डॉक्टर सुलोचना शर्मा बूंदी से, जिन्होंने हमें मैसेज किया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इसी तरह से सुनते रहिए, मैसेज भेजते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद।
मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली वाणी है। गीता के उपदेश को तनिक भी हम समझ कर जीवन में उतारें तो जीवन की सार्थकता है। कई बार हम श्लोक दोहे आदि पढ़ तो लेते हैं, पर उसमें छुपे गूढ़ अर्थ, उससे जुड़े पात्रों का परिचय हमें नहीं होता। यही बात ध्यान में रखते हुए श्री गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी एवं हिंदी टीका का पठन करने का निश्चय किया। विवेचनाकार हैं श्री जय दयाल गोयंद का। अतः ये मात्र पठन है, इसे रोचक से अधिक ज्ञानवर्धक मानकर श्रवण करें। हम गीतोपदेश का सही प्रकार से समझकर जीवन को अर्थपूर्ण व गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। तो सुनते रहिए और गीता रूपी सागर में एकाग्रचित होकर गोता लगाइए। हर बार आपको ज्ञान रूपी रत्न प्राप्त होगा। धन्यवाद। तो करते हैं श्लोकों का पठन आरंभ।
यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यम भावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही। अर्थात, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। प्रश्न, पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है, अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं, अतएव यह उदाहरण उचित ही है। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर या शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्त युक्त नहीं जचता। यहाँ जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है, वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है, अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्तिसंगत है। यहाँ वासांसी और शरीराणी दोनों ही पद बहुवचनांत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है, अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। उत्तर, जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है, कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा, तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर तीन है। जब जीवात्मा इन शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब वे तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसका स्वभाव यानी कि प्रकृति बदलता जाता है। सत, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है, इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसीलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद में तीनों शरीर के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति युक्त ही है। आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई है। वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता, पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतन का वाचक है, अतएव देह के संबंध में उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है, इसलिए देही के अन्य शरीरों में जाने की बात कही गई है। वस्त्रों के लिए गृहणाति तथा शरीर के लिए संयाति कहा है। एक ही क्रिया से काम चल जाता, फिर दो तरह का प्रयोग क्यों किया गया। गृहणाति का मुख्य अर्थ ग्रहण करना है और संयाति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ गृहणाति क्रिया दी गई है, और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसीलिए संयाति कहा गया है। नरह और देही, इन दो पदों का प्रयोग क्यों किया गया है। एक से ही काम चल सकता था। नरह पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का। अतः का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है, इसीलिए वस्त्रों के साथ नरह का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः तीन श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे, अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नियत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्नियस्त्र द्वारा अग्नि को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता, और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है, अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। आशा की किरण, यह है पॉडकास्ट आपका अपना, जहाँ पर आप और हम मिलकर जीवन को देंगे एक नए सूर्योदय की आशा की किरण। जी हाँ साथियों, इस कार्यक्रम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी को ले जाएं उम्मीद, आशा, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और ढेर सारे उत्साह की ओर। तो फिर हर रोज़ आशा की किरण में आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम नए नए प्रयास, नई नई कोशिशें जीवन को एक उत्थान देने की करते रहेंगे, ज़रूरत है आपके साथ की। तो मिलते रहिए आशा की किरण में, जब लेकर आऊँगी मैं आपकी दोस्त किरण आचार्य।